ऑस्ट्रेलियन सरकार ने अब अबोरिजिनल ध्वज के कॉपीराइट को सुरक्षित कर लिया है। पिछले कई सालों से यह अधिकार निजी व्यक्तियों के हाथ में थे। ध्वज निर्माता लुरिट्जा कलाकार हैरल्ड थॉमस से हुए लाखों डॉलर के इस नए सौदे का मतलब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति या संस्थान इस झंडे का प्रयोग सार्वजनिक रूप से बिना किसी शुल्क के कर सकेंगे। इस अधिकार के लिए एक लंबा अभियान चलाया गया था। ये अनूठा है, अलग है और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख आयोजनों का केंद्र भी रहा है। साल 2000 में रिकॉन्सिलिएशन के समर्थन में 2.5 लाख लोगों के सामने इस झंडे को सिडनी हार्बर ब्रिज पर लहराया गया था। उसी साल यह झंडा कैथी फ्रीमन के ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद गृहभूमि पर उनके कंधों पर भी सुशोभित हुआ था। अबोरिजिनल ध्वज ऑस्ट्रेलिया भर में स्कूलों, टाउन हॉल और खेल के मैदानों में लहराता नजर आ सकता है। इसके अस्तित्व के एक लंबे समय तक ध्वज का मालिकाना हक और अधिकार विवाद का विषय बने रहे हैं, पर अब एक लाखों डॉलर के करार में इस झंडे का कॉपीराइट राष्ट्रमंडल ने हासिल कर लिया है। केन वॉयट इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस मंत्री हैं।
इन शॉर्ट, वी फ्रीड द फ्लैग फॉर आवर पीपल टू यूज इट एट एनी टाइम ऑन एनी अपैरल और फॉर एनी इवेंट। It also continues the commitment of the 50 years we've had in using the flag to be the symbol that unites us, brings us together for common good, but also in moments when people are protesting, but more importantly, It's available for all Australians.
इस डील के अंतर्गत अब इस झंडे का प्रयोग रॉयल्टी मुक्त होगा। कोई भी ऑस्ट्रेलियाई अब कपड़ों, वेबसाइट या अन्य मुद्रक व्यवसायों के लिए इस झंडे का प्रयोग करने को स्वतंत्र होंगे। शर्त बस इतनी है कि ये प्रयोग सम्मानजनक हो। ध्वज निर्माता हैरल्ड थॉमस इसके सृजनकर्ता के रूप में हमेशा पहचाने जाएंगे।
I no longer will have copyright of the Aboriginal flag, but I still own the elements of it, the integrity of it, that it's my design.
एक रिकॉर्डेड वक्तव्य में उन्होंने कहा कि वे उत्साहित हैं कि उनकी कृति अब सार्वजनिक प्रयोग के लिए उपलब्ध है।
It's freed up to be accessed for all sorts of people, all Australian people, mind you, not just Aboriginal, but it allows the Aboriginal flag to breathe a new life in itself, right? Breathe. So it becomes definitely in partnership with the Australian flag. And that I love.
श्री थॉमस को इस सौदे के लिए $2 मिलियन की रकम चुकाई गई है। करार के अंतर्गत ध्वज से संबंधित सभी कॉपीराइट और मौजूदा कमर्शियल डीलें अब सरकार के पास होंगी। इससे पहले 2018 के आखिर में झंडे के डिजाइन को इस्तेमाल करने का एकाधिकार WAM क्लोदिंग नाम की एक कंपनी को बेचा गया था। इस करार की कीमत सार्वजनिक नहीं की गई है। ये कंपनी इंडिजिनस नहीं है। इस कंपनी पर आरोप लगते रहे हैं कि ये हर उस संस्था को सीज एंड डिजिस्ट यानी झंडे के वर्तमान और भविष्य प्रयोग से रोकने के आदेश जारी करवाती रही है जिन्होंने ध्वज का इंडिजिनस आयोजनों के लिए इस्तेमाल करना चाहा। इसमें AFL भी शामिल है। 2020 की एक सीनेट सुनवाई में इस करार की जांच भी हुई थी, जहां ग्रीन सांसद लिडिया थॉर्प ने कंपनी के निदेशक सिमेल मूर से कॉपीराइट के संबंध में कुछ सवाल जवाब किए थे।
Can you please talk us through the process that led to you holding the copyright?
It was due to an already existing relationship with Harold Thomas.
Could you elaborate?
No, we don't know.
पिछले कई सालों से फ्री द फ्लैग अभियान के अंतर्गत ये मांग की जा रही थी कि अबोरिजिनल ध्वज सभी के प्रयोग के लिए उपलब्ध हो। लॉरा थॉमसन लघु उद्योग क्लोदिंग द गैप की सह संस्थापक हैं। उन्होंने इस अभियान को तब शुरू किया जब उन्होंने इस ध्वज का प्रयोग अपने कपड़े पर किया और उनकी कंपनी को सीज एंड डिजिस्ट का आदेश आ गया। उन्होंने ABC को बताया कि वो इस फैसले से खासा उत्साहित हैं।
Lots of Aboriginal people and Australians in general believe that, you know, all flags belong to the public, but essentially the Aboriginal flag was and is privately owned, and now, you know, with this announcement, the Aboriginal flag's free for everyone to use, and that's so exciting, and I think we're going to see the Aboriginal flag flying again like it once did, and for people to enjoy proudly.
ये सौदा बिना कानून में बदलाव किए ही हो गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से प्रोफेसर किम्बरली विदरॉल कहती हैं कि इस झंडे के इर्द गिर्द फैले कानूनी दांव पेच काफी तिकड़मी रहे हैं।
The case certainly does show that copyright, with its emphasis on and considerable powers given to individual copyright owners, is a really poor fit for important symbols and symbolic works, and it's also a very poor fit for a lot of indigenous art, where there are communal interests as well as individual interests. And certainly too, if Australian copyright law had better exceptions, like a fair use exception or a proper quotation exception, those exceptions wouldn't have solved all of the controversies that were arising in relation to the flag, but they could have solved some of the problems and enabled especially some important non-commercial and symbolic uses.
नए करार के अनुसार इस झंडे के क्रय विक्रय से होने वाली सारी आमदनी अब नायडॉक के कार्य के लिए समर्पित होगी। इसी के साथ श्री थॉमस के नाम पर एक अलग स्कॉलरशिप बनाई जाएगी। श्री थॉमस ध्वज के कॉपीराइट के इस करार से आए $2 मिलियन से एक गैर सरकारी लाभकारी संस्था बनाना चाहते हैं जो ध्वज के मूल्यों के साथ काम करेगी। लेबर की इंडिजिनस अफेयर्स प्रवक्ता लिंडा बर्ने ने इस कदम का स्वागत किया है, पर इस सौदे के कई ऐसे पहलू हैं जिनका जवाब सरकार ने अभी तक नहीं दिया है।
I think it's important that we see a representative group of people be involved in determinations about the flag. I'm not quite sure what the plans are in relation to how it's going to be administered. The Prime Minister said it'll be administered in much in the way as the Australian flag is, but we need to remember that this is an officially recognised flag of Australia and therefore hugely significant.
SBS न्यूज से नवीन रिजिक और सारा कोलार्ड की इस खबर को SBS हिंदी से पेश किया है वृषाली जैन ने।